نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں آج اس میں ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے چند شبہات اور ان کی حقیقت بازار میں ایک عورت محتسبہ کے طور پر تقرر نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات لیکن اگر آپ میں سے کسی کو موقع ملا اور اللہ تعالیٰ جن کو نہیں ملا ان کو بھی موقع دے سعودی عرب جانے کا آپ نے لفظ سنا ہوگا شرطہ شرطے کون ہوتے ہیں بیسیکلی پولیس نہیں ہوتی ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی کام غلط ہوتا دیکھے تو وہاں روکے پولیس تو ہوتی نا کرمنلز کے ساتھ شرطہ ایسے مسئلے رات جاتے دیکھا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے غلط حرکت ہے یا کوئی عورتوں کو جگہ نہیں دے رہا یا مثال ہے کوئی مرد کاروبار کر رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے چھوٹے چھوٹے کیسز پہ بیسیکلی امر بالمعروف ہی کے اوپر بات ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کام پہ عورت کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ دیکھیے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی ایک کشش رکھی ہے اب ایسی عورت وہاں وہاں جائے تو ہو سکتا ہے کہ خرابی ادھر سے بدل کر کسی اور جگہ چلی جائے تو یہاں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہی دیکھیں گے کہ جب ایک عورت اس موقع پر جبکہ اس کو نہیں اس چیز کی اجازت دی گئی کہ وہ بازار میں جائے اور وہ ایسے روکے کیونکہ لوگ عورتوں کی بات سنیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا فتنے پیدا ہونے کا بہت سارا ڈر ہے پچھلا ٹاپک ہم دیکھ چکے ہیں کہ عورت کا اصل ٹھکانا اس کا گھر ہے اور جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے تو اس کی عزت اس کی عصمت سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے اب عورت کو اگر آپ بازار میں کھڑا کر دیں روک ٹوک کی باتوں میں لے جائیں پچھلے ٹاپک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کوئی کہے گا کیا حرج ہے یہ ڈسکریمینیشن ہے بہت جلدی لوگ عورتوں کے حقوق پہ ان چیزوں کو لے آتے ہیں حالانکہ یہ کوئی حق تو نہیں ہے کسی کو برائیوں سے روکنا یہ تو برا بننے والی بات ہے کون پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو ٹوکے تب ایک عورت ٹوکے گی تو لوگوں کو بری ہی لگے گی نا تو اللہ نے بلکہ عورت کو اس طرح کے برا بننے سے بچا دیا تو چند شبہات ہیں یعنی اس میں جنرل باتیں ہیں بازار میں ایک عورت کی بحثیت محتسبہ تقرری کے حامیوں نے اپنے موقف کی تائید اور اس کے منع ہونے کے دلائل کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں کی ہیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اب آگے جو بات ہوگی اور یہ آخری ٹاپک ہے اس بک کا اور وہ کیا ہے نمبر ایک فرضیت احتساب پر دلیل ان سے استدلال لیا گیا یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی برائی کو دیکھ کر روکنا لازمی ہے تو پھر عورت دیکھے گی تو کیا وہ نہیں روکے گی اس پہ بات ہوگی پھر اشفا رضی اللہ عنہ کی بحثیت محتسبہ تقرری کی کہانی اور اس کی حقیقت یعنی یہ صحابیاں تھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مقرر کیا گیا تھا کسی جگہ ایسے کام پہ کہ یہ لوگوں کو روک ٹوک کریں تو اس کی اصل کیا وہ ہم پڑھیں گے پھر سمرہ رضی اللہ عنہا کا احتساب کے لیے بازار نکلنا اور ان کی حقیقت اور پھر محتسبہ کا اہل بازار کے حالات سے زیادہ آگاہ ہونا اور اس کی حقیقت اور محتسبہ مقرر کرنے کا عورت کے بازار جانے پر قیاس اور اس کی حقیقت اور بازار نسواں یعنی صرف عورتوں کے جو بازار ہوتے ہیں اس میں مرد محتسب ہو جائے تو فساد پھیلتا ہے تو اس کی حقیقت اور آخری ٹاپک جو ہے وہ کیا کہ عورتوں کو معاملہ سونپنے کے متعلق حدیث کی خلافت کے ساتھ تخصیص اور اس کی حقیقت مجھے پتہ ہے یہ مشکل نام ہے بس آپ چھوڑ دیں جو باتیں آپ کو اندر سمجھ آئیں گی وہ لے لیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ احتساب فرض ہے اس کے بارے میں جو دلائل ہیں اس سے دلیل لے کر اگر ایک عورت کو بھی بازار میں نامینیٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر کیا شبہات آ سکتے ہیں بعض لوگ ہر عاقل بالغ اور ذی استطاعت مسلمان پر احتساب کے فرض ہونے کے بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ عورت بھی بازار میں محتسبہ بن سکتی ہے ایک صاحب کہتے ہیں اور احتساب تو اب سب ہی سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں تو احتساب کمیٹیاں بھی بنتی ہیں اور حکمرانوں کا احتساب بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے کا احتساب کرنا فرض ہے اور اس پہ جتنی بھی دلیلیں ہیں جتنی احادیث ہیں اس کی دلیل میں وہ ہر عاقل بالغ قادر مسلمان کے لیے ہیں خواہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ احتساب کے متعلق شرعی نصوص عام ہیں اور ان میں تمام عاقل بالغ مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اب یہ دلیل ہے یعنی میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اس میں رکھا جا سکتا ہے ایک تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ برائی کو دیکھ کر روکنا ہر ایک نے تو مرد بھی روکیں گے تو عورت بھی روکے گی تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو فریضہ احتساب ادا کرنے سے نہیں روکتے بلکہ انہیں اس کے ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے دیکھیں نا اگر ہم اس چیز کو نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ موضوع کیوں پڑھتے ہم نے تو اس پورے ٹاپک میں کتنے سیشنز میں یہ سنا ہے نا کہ کیسے حکمت سے ہم دوسروں کو برائی سے روکیں अपने घर वालों में देखें तो कैसे रोकें, रिश्तेदारों में देखें तो कैसे हो, बाहर अगर सोसाइटी में देखें, ही कुछ तो पड़ा। लेकिन अब ज़रूरी है कि औरत को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए जाओ लोगों को टोको। अपने लफ्ज़ों में सिर्फ आपको ये लफ्ज़ मुख्तसबा नहीं समझ आता ना, तो लेडी पुलिस आप इसको ले लीजिए। अब आप देखिए कि एक औरत लेडी पुलिस बन जाए और उसके पास तो कानून की जारहदारी भी है कि वो कैद कर सकती है, तो कितना रिस्की खतरे वाला टॉपिक है। कोई जगह ये पकड़ी जाएगी, कहीं जगह ये किसी को पकड़ेगी। और अगर एक औरत किसी मुजरिम के या किसी गलत काम करने लेके हत्थे चढ़ जाती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उसका क्या हशर करेंगे। तो औरतों के लिए ऐसे शोबे चूज़ करना पसंदीदा नहीं है कि जिसमें उसकी इज्जत को, उसकी इज्जत को खतरा हो। फिर आप देखिए, ख़ास यूनिफॉर्म है, एक ख़ास वर्दी है, चोरों को पकड़ना है या अगर ऐसे जगहों पर जाना है, रातों को जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, तो इस्लाम के बहुत सारे बुनियादी चीज़ों से ये टकराव पैदा करती हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या औरतों ने अपने से के सारे काम कर लिए हैं जो ये ज़रूर करना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर औरत को मजबूरन घर से निकलना भी पड़ता है, ज़रूरियात हैं, हालात की कोई तंगी बेची है, टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है औरत के लिए, बच्चों की टेक केयर और टीचर, क्योंकि औरत के मिजाज में तरबियत है। मर्द वो तरबियत कर ही नहीं सकता जो एक औरत करती है। अब बच्चों को घर में पाल रही है औरत, तो वो बाहर जाके किसी के बच्चे पाल लेती है या उसके पास बेबी सिटिंग के लिए बच्चे आते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो ज़्यादा अच्छा टैकल कर लेगी। खाना पकाती है ना, औरत की शान है, कैटरिंग कर ले, समोसे बना के बेच ले, रोटियां बना के बेच ले, दावतों में खाना बना ले, केक बना ले, कोई हर्ज की बात नहीं है। औरत जितनी दफ़ा घर से निकलेगी, याद रखिए कि वो दूसरों के लिए भी मसले बनेंगे और खुद भी मसलों का शिकार होगी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये लिखते हैं कि दोनों बातों में बहुत फ़र्क है, मर्द के जाने में और औरत के। जिस अल्लाह ताला ने औरत पर एहतसाब फ़र्ज़ किया है, इसी ने मर्दों को औरतों का सरपरस्त बनाया, औरतों को अपने मामलात का पूरी तरह इख्तियार नहीं दिया और औरतों का असल ठिकाना इनके घरों को करार दिया। अजब बात है कि एहतसाब के फ़र्ज़ होने के बारे में दलाइल से दलील लेते हुए इन्हें मजबूती से थामने का दावा किया जाए और औरतों को वाली बनाने से मना करने वाली तमाम जो दलाइल हैं उनको पीछे कर दिया जाए, तो क्या ये इसकी दलील नहीं? क्या फतू मेनू नबी बाद दिल किताब ही बतख फुरू नबी बात। बस लोगों ने बाजार में औरत को बहसियत महतसबा मुकर्र करने की खातिर इस कहानी से इस्तदलाल किया है, जिसमें कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो उम्मे सुलेमान अशिफा रजी अल्लाह अन्हा को बाजार में इख्तसाब की गरज से मुतय्यन फरमाते, या उन्होंने फरमाया, और दर्जा ज़ैल दो बातों की रोशनी में इस दलील की हैसियत वाज़ह होती है। पहली बात है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ये कहानी सिरे से साबित ही नहीं। इमाम अबू बकर इब्न अरबी ने इसके मुतल्लिक तहरीर किया, ये जिक्र किया कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक औरत को बाजार में इख्तसाब की गरज से मुतय्यन किया, लेकिन ये सही नहीं। इस कहानी की तरफ तवज्जो ना करो, यकीनन ये तो बिदती लोगों की जानिब से हदीस में दाखिल करदा झूठी बातों में से है। सच बताइए, जिन्होंने हज़रत उमर को पढ़ा है या उनको जानते हैं थोड़ा, आप हज़रत उमर से ये तसव्वुर भी कर सकते हैं? हज़रत उमर ने तो मांग मांग के औरतों के पर्दे लिए थे। नबी सल्लम के पास मर्द भी आते थे, औरतें भी। उस वक्त तक पर्दा फ़र्ज़ नहीं था, तो हुजरे में अगर आपकी बीवी आप कोई मसला पूछने आ गया, कोई इंस्ट्रक्शन लेने आ गया, तो हज़रत उमर को बहुत चुभती थी ये बात, खौलती थी। कहते थे अल्लाह के नबी सल्लम, आपकी बीवियाँ घर में होती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए नबी सल्लम की शान, कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते थे। कहा, उमर जब तक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आता मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर रिवायत में था कि उमर मांगा करते थे कि अल्लाह बयानन शाफियन, यानी ऐसा कोई हुक्म भेज जो बिल्कुल क्लियर कट हो। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए, किस तरह आप लोग सूरत नूर पढ़ लें, सूरह अहज़ाब पढ़ लें, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पीछे किया पीछे किया। मैं वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से बोलो मांगो, फिर युद्धनी नाले हिन्न मिन जलाबी भी हिन्न कहीं, यानी होते होते औरतों को सेग्रीगेट कर दिया गया। अब उमर जैसा शख्स जो घर में आए किसी मर्द के सामने एक औरत को पसंद नहीं कर रहा, तो क्या वो बाजार में एक औरत को मुकर्रर करेगा? आप कहते हैं निकाब करके चली जाए वो औरत, ज़रूरत क्या, मर्द नहीं है। और दूसरी बात याद रखें कि बाजार जगह ही औरतों की नहीं है, मर्दों की है। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा, कल या परसों का दर्स था, मैंने कड़वा तरीन दर्स दिया अपने इस ट्रिप का, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप दें पर्दे पे दर्स, तो मैंने फिर दे दिया, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना, कि किस किस तरह से आज हम पे पर्दे पड़े हुए हैं। आप सुनिएगा, मिक्सलर पे है, शायद सेव हो गया हो तो आप सुन सकते हैं, बात तो सच है। आज हम औरतों ने अपने आप को बहुत जगह एक्सपोज कर दिया है ना। आप देखिए कि अब इस वक्त आप और मैं ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं कि गेट पे जब थे तब सिक्योर फील कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं ना। गेट पे आप जितना अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, अगर आप यहाँ से निकले तो वो आप ठोकर न्याज बेग पे कहीं खड़ी हो वहाँ सिक्योर फील करेंगी, यहाँ फील करेंगी ना निस्बतन। ठोकर न्याज बेग पे आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी, या आप समझें कि नारकली में गई हैं तो वहाँ, अब इसको और दूर करती जाए, हम यहाँ फील करते हैं, हमारा ठिकाना ही है। बाहर तो गर्मी भी है, पसीना भी है, लोगों की नज़रें भी हैं, मट्टी भी है और स्ट्रेस भी है, घर जैसी कोई नेमत है? पता नहीं औरतों को क्या चाहिए कि हमने बाहर जाके जरूर डंडा पकड़ के ही बुराई करने से रोकना है। तो बाजार जरूरत की जगह है, शौक और फन की जगह नहीं। और दूसरा एक टॉपिक मैंने आने से पहले 2-2.5 माह पहले तकरीबन आप हो गए फ्रांस से किया था, शॉपिंग और उसका तरीक़ाकार, इतना इफेक्टिव वो टॉपिक बन गया कि लोगों ने उसकी फरमाइश पे सीरीज और क्या कुछ बनवा लिया, कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है। और यकीन कीजिए आज औरत का कुरान सीखने के लिए घर से जाना गैर मारूफ है। कहाँ जा रही है, रोज़ क्यों जा रही है, मासियों का वक्त है, खाने का वक्त है, मतलब लोगों को अजीब लगता है। कभी कभी आप चले जाएँ कुरान खानी के नाम पे, बहुत अच्छा है, मिलाद में के बड़ा अच्छा जाओ, ये मारूफ है, लेकिन कुरान सीखने के लिए जाना गैर मारूफ है, ये भी कोई पढ़ने की चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए कि मारूफ चीज़ के बाजार गई थी शाम को, मियाँ से किधर से आज बाजार गई थी, उनके कान पे जीव भी नहीं रेंगे, यहाँ गई होगी भाई, जाना ही है इसने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी को भी आप बताएं बस आज बाजार में चली गई, कोई बुरा नहीं मानता, ये मारूफ बन गया। हालांकि बाजार औरत के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन जगह होनी चाहिए। तो बहरहाल अब मैं यहाँ वो बातें नहीं दोहराना चाहती, लेकिन इस मौजूद को सुने, आप फिक्र नहीं करें, आप सुन के रुक नहीं जाएंगे बाजारों से, ये मुझे पहले ही पता है, लेकिन कम अज कम उसको टैकल तो करेंगे। मैंने उस वो जो शॉपिंग का तरीका था उसमें पूरे तरीके बताए हैं, कब जाएं, किस वक्त जाएं, रात को जाएं, वहाँ बाहर तो हर तरह की शॉपिंग होती है, यानी रश में ना घुसें और अपनी एक एक चीज़ पे ना, आप मोती लेने तो चल पड़े, कल बटन लेने हो, सुई तो ली नहीं थी वो लेनी है, और प्याज नहीं आया तो धनिया नहीं आया तो लस्सी नहीं आई, एक प्लान बनाइए और जाइए और एक दफ़ा लेके आ जाइए। हर वक्त हर लम्हे बाजार की तरफ जाना ये भी कोई पसंदीदा अमल नहीं है। तो बहरहाल ये किस्सा दुरुस्त नहीं है, ये जो मतलब लोग कहते हैं कि उन्होंने किया था ये ठीक नहीं। दूसरी दलील ये है कि अगर ये किस्सा साबित भी हो, बिलफर्ज हम कहते हैं कि ये सच्चा किस्सा है, तो इससे मुराद ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक इन्हें बाकायदा मुहतसिबा की हैसियत से बाजार में मुकर्रर करते थे, बल्कि जिन किताबों में इसका जिक्र है वो ये है कि कभी कभी वो बाजार का कोई मामला इनके सुपुर्द कर देते थे। व रुबामा का लफ्ज आता है, रुबामा किसको कहते हैं, कभी कभार, कभी कभार बाजार के किसी मामले को इनके सुपुर्द कर देते। काजी अबू अब्बास अहमद बिन सईद इस बारे में लिखते हैं, हुक्म तो आमतौर पर किए जाने वाले अमल से साबित होता है, शाजो नादर यानी कभी कभी बात से हुक्म साबित नहीं होता, और ये वाक्य बहुत शाजो नादर है, यानी ऐसा हुआ भी अगर कभी तो कभी एक दफ़ा हुआ होगा, ये एक परमानेंट चीज़ नहीं थी। किस्से के साबित होने की सूरत में इससे मुराद ये हो सकता है कि कोई ऐसा मामला इनके सपुर्द किया होगा जिसका ताल्लुक सिर्फ खवातीन से था। काजी मजीलदी ने इस सिलसिले में लिखा है कि शायद के वो बात खसूसी तौर पर औरतों ही के मुतल्लिक थी, और डॉक्टर इमाम ने इस रिवायत के बारे में लिखा कि हमारी नज़र में सही बात यही है कि इस रिवायत और इसी तरह के दीगर आसार का ताल्लुक ऐसे निस्वानी माशरों से है जहाँ बेचने और खरीदार सब औरतें हों, जैसे गुज़श्ता ज़माने में आम हमाम सिर्फ औरतों के लिए ही मखसूस जगह होती थी, ये बात निज़ाम के अतबार से ज़्यादा मजबूत और शरई है। बात समझ गए, यदि ऐसा कोई बाजार है जहाँ है ही सिर्फ औरतें तो वहाँ कोई हरज नहीं है क्योंकि वहाँ मर्दों का इंटरेक्शन नहीं। देखिए एक छोटी सी बात समझ लें कि इस्लाम कोई दुश्मन नहीं है औरतों का, लेकिन औरत को पिटने से, औरत को बुरे हालात में पड़ने से बचाता है। पसंदीदा अमल जो नहीं है वो क्या है कि औरत मर्द की मिक्सिंग हो। अब आप देखिए कि हमारे अपने मुसलमान मुल्क में कितने बाजार हैं जो सिर्फ औरतों के हैं, और कितनी दुकानें हैं जो सिर्फ औरतों की, और वहाँ सिर्फ औरतें ही जाती हैं, आटे में नमक के बराबर। चंद एक प्राइवेट दुकानें होंगी छोटे लेवल पे, और अगर हों तो दूर भी हैं, ढूंढ के जाइए, महंगी भी हैं, जाइए वहाँ से अपनी पर्सनल चीज़ें ले लें। और आप देखिए कि जब मर्दों से चीज़ें खरीदती हैं औरतें, और वो चीज़ें जो स्पेशली औरत के हुसन को निखारने वाली मेकअप की चीज़ें, फिर उन्हीं से मशवरे कर रही होती हैं, ज्वेलर्स पे जाके जो कुछ औरतें करती हैं, और जो उन्हीं से पूछती हैं ये सज रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप सोचिए कि ये तो फिर सारी हदें पामाल करने वाली बात है, सीधी सी बात है। जिस चीज़ से इस्लाम ने रोका हम उसी पर आ गए। औरत ने खूबसूरत बनना है, आपको पार्लर की ज़रूरत है, आप ऐसी जगह हैं जहाँ औरतों की ब्यूटी का ख्याल है, उसकी मसाज है, खातों में रहते हुए हर चीज़ है, आप औरतें औरतों में जाके फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन आप अगर अब होने क्या लगा कि कहते हैं नहीं मर्दों का मसाज अच्छा है, अब आप ज़रा इमेजिन तो करें, और एक औरत है वो मर्द का मसाज करे, इससे बढ़ के फिर रह क्या जाना है पीछे। ये वो चीज़ें हैं जिसको अल्लाह के नबी की वो बात याद आती कि वो एक वक्त आएगा कि गुनाहों का नाम बदल के गुनाह होंगे, शराब का नाम बदल दिया जाएगा, और जिना का नाम कुछ और हो जाएगा। तो बहरहाल अक्ल में आती है ये बात, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसको समझने में देर लगे। फिर इसी तरह से जाफिर कासमी की गलतफहमी इस किस्से से, जिन लोगों ने अशिफा के किस्से से दलील लेते हुए ठोकर खाई यानी गलती की, इनमें लबनान के एक उस्ताद जाफिर कासमी हैं। इनका वाक्या है नीचे, क्योंकि बुक पढ़ने तो हमें ये सारा पढ़ना पड़ेगा वरना हमारा दिल मुतमईन है इस पे। आप में से किसी का है ऐसा शक वाला दिल के नहीं, औरतों को जरूर ही जाके खड़े होके वहाँ ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हमारी बुक में लिखी हुई है तो हम इनको पढ़ रहे हैं। उस्ताद जाफिर कासमी की तहरीर है, वो लिखते हैं कि इब्ने जौजी ने शिफा की उमर रजी अल्लाह अनहो की जानिब से तकर्री की तरफ इशारा किया। उन्होंने बयान किया कि उमर रजी अल्लाह अनहो जब बाजार तशरीफ ले जाते तो इनके यहाँ जाते। फिर उस्ताद कासमी ने इब्ने जौजी की इबारत पर तबसरा करते हुए कहा कि इस इबारत में इनकी जाय अमल की तरफ इशारा है, क्योंकि अगर वो वहाँ ना होती तो अपने घर में होती, लेकिन वो तो बददियानत लोगों को अदब सिखाने, इनकी निगरानी करने, गरज के अपनी ड्यूटी के अदा करने की खातिर बाजार में थी। बहरहाल इनकी ये सारी जो तहरीर है, इसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि एक पढ़ा लिखा शख्स अपनी दलील की इमारत सिर्फ मफरूजों पर कायम करेगा। हाफिज़ इब्ने जौज़ी की इबारत जो तफसीर उस्ताद कासमी ने की है, मालूम नहीं लुगत की कौन सी किताब इसकी तायद करती है। क्या असर फारूकी में बददियानत लोगों को अदब सिखाने और इनकी निगरानी में मुहतसबीन के दफातर कायम किए जा चुके थे? यानी उस वक्त तक तो इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम बना ही नहीं था कि तकरर के थे, और आज सऊदी अरब में ऐसे हैं, पाकिस्तान में नहीं है, इतने होंगे भी तो वो पुलिस तक ही केस जाएगा ना। लेकिन यह है कि उस वक्त हज़रत उमर के दौर में इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम ही नहीं था कि वहाँ ऐसे शोबे कायम किए जाते। असल सूरत हाल ये थी, आप सारी बातें तो मफरूज़ हैं, ठीक क्या था कि हज़रत शिफा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मस्जिद और बाजार के दरमियान था। हज़रत उमर जब मस्जिद से निकल कर बाजार की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो अशिफा के घर जाते। इमाम मालिक की बयान करदा रिवायत पढ़ने से सारी सूरत हाल समझ आती है। अब ये वो सारा जो तजस्सुस हमारे भी जहनों का था वो खुल जाएगा। रिवायत क्या है, अबू बकर बिन सलमान बिन अबी हसमा ने रिवायत की, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो ने सुलेमान बिन अबी खसमा को फजर की नमाज़ में ना पाया, यानी एक सहाबी है और वो फजर में नहीं आए। फिर उमर बिन ख़त्ताब बाजार की तरफ गए और सुलेमान का घर बाजार और मस्जिद नबी के दरमियान था। इनका गुजर उम्मे सुलेमान अशिफा के पास से हुआ तो उन्होंने इनसे फरमाया, मैंने नमाज में सुबह सुलेमान को नहीं देखा, यानी उनसे उनके शोहर के बारे में पूछ लिया। उन्होंने जवाब दिया, वो रात नमाज तहज्जुद पढ़ते रह गए, यानी रात को इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ी कि फजर के वक्त आंख लग गई। बात वाज़ेह। हज़रत उमर ने फरमाया, यकीनन मुझे फजर की नमाज बाजमात अदा करना सारी रात के क़याम से ज़्यादा पसंदीदा। अब आप देखिए, एक बीवी से उसके शोहर की नमाज का अगर पूछ लिया तो क्या ये वो से ये कहानी बन गई कि उसको नॉमिनेट किया था? आप यहाँ से देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो जरकली की तहरीर पर कासमी का तबसरा ये लिखते हैं कि वो कभी कभार बाजार का कोई मामला इन्हें सौंप देते। इस पर तबसरा करते हुए उस्ताद कासमी ने लिखा कि हमारे शेख जरकली का ये कहना कि वो कभी कभार और कोई मामला इनके सबूत करते, ये इनका अपना इज्तिहाद है, रिवायात में ये अल्फाज मौजूद नहीं है। बहरहाल इन किताबों को देखने से पता चलता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, और हमारा भी इसमें दिल खुला हुआ है कि इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी तक जो बात हुई उसका खुलासा, आपके मेरे लिए इस बात की हुज्जत नहीं है कि हम हर वो काम करने लग जाएं जिसको कोई दूसरा करता है। देखिए आज का दौर तो ये आ गया है कि अगर हम सब, मैं और आप और सारे हमारी दुनिया में जो भी साथी हैं इधर इर्द, अगर हम अपनी अपनी इसलाह की कोशिश कर लें ना, आप अपने घर की जिम्मेदारी ले लें, मैं अपने घर की जिम्मेदारी ले लूं, तो हमारे सारे मसले ही हल हो जाए। सच है कि नहीं है? वजह क्या है, हर बंदे ने अपना अपना काम छोड़ा तो सारा काम पड़ गया हुकूमत पे। हुकूमत को कहाँ रोक टोक की ज़रूरत पड़ती है जहाँ आप खुद नहीं करते? बस आप देखिए, एक मिसाल देती हूँ सफाई से। अब मैं और आप अपने घर की सफाई कर लेते हैं ना, तो हमें कभी किसी को कहना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट अंदर आके हमारे घरों की सफाई नहीं करती। गली की सफाई, मोहल्ले की, बाहर रोड्स की सफाई, हम कहते हैं कचरा है, गंद मचा हुआ है, करते नहीं है, नियत ठीक नहीं, मिसाल है। तो भाई आप सारे हम मिलके खुद ही करवा लेते हैं। 10 घर इधर हैं, 10 इधर हैं, 20 घर हैं इस गली में, हम सारे थोड़े थोड़े पैसे डालकर एक शख्स को रखें, वो रोज़ सुबह उठ के झाड़ू फेर दे, हमारा काम आसान हो जाएगा ना। जिस तरह ज़ाहरी सफाई अगर साथ साथ रखी जाए और अपने उन पर कर ली जाए तो गंदगी नहीं फैलती, इसी तरह गुनाहों की गंदगी भी तभी फैलती है जब हम अपनी इनफरादी कोशिशों को छोड़ते हैं। आप देखिए ना, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ज़रूर इस चीज़ की फ़िक्र लगनी चाहिए। बिलीव मी, हर बंदा हम में से और हर बंदी जो सफाई पसंद है वो बुराई नहीं देख सकती। लोगों के तो हम कहते हैं फुला बहुत सफाई पसंद है, फुला बड़ा नफासत पसंद है, ये कहते हैं ना, वो तो यूं करके देखते हैं, मिट्टी तो नहीं है, डस्ट तो नहीं है, मासियां काम करती हैं, हम बेचारे उनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, अगर यही दकीक और बारीक नज़र हमारी बुराइयां देखने पे चुनने पे लग जाए तो क्या हमारे घर और हमारे घर वालों में गंदगी रहे? सबसे पहले तो अपने आप को देखें, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको दूर करें। देखिए, सारी कोशिशों के बावजूद भी सब कुछ दूर नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम कोशिश करने से हमें एहसास तो रहेगा ना। मैंने इसको एक और मिसाल से भी समझाया, अगर आप समझना चाहें। आप देखिए कि जब हम थोड़ा सा वेट कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम क्या खाना है क्या नहीं खाना केयरफुल रहते हैं ना। कभी हैवी खा लिया तो अगले दिन ना खाया, ऐसा होता है ना, इस ओके। और कभी केयर फ्री होके छोड़ दें सब खाना है तो क्या होता है, वेट बढ़ जाता है ना। हर मामले को आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं ना तो आप बहुत केयरफुल होंगे, खाना पका रही हूँ कोई चीज़ ना ऊपर गिर जाए, पसीना ना आ जाए। लेकिन जब कपड़े गंदे होते हैं तो फिर कहते हैं जो गिरना गिर लें, अब एक दफ़ा ये भी कर लें वो भी कर लें, फिर ही सफाई करेंगे ना। बस अपने लिए, आप और मैं, देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे प्यार का ये इजहार है कि हम अपने प्यारों में बुराई को रोकें और टोकें। नहीं आज रोक रहे, मैंने एक जगह जुमला बोला था किसी तफसीर की क्लास में, जो आज अपने प्यारों को बुराई करता देख कर नहीं रोकता, इसकी सजा वो कयामत के दिन उनको जहन्नुम में जलता देख कर भुगतेगा। दुख तो फिर भी हमें ही होना ना, हम चाहते हैं। और याद रखें, इस पे मैंने बहुत दफ़ा, इस दफ़ा भी बात की है, पहले भी करती हूँ, कि जब हम दूसरों को बुराई से नहीं रोकते और हम खुद नहीं रुकते और बुराइयाँ करते हैं तो उसकी सजा भुगतते हैं। हमारी बीमारियाँ, हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफें, आज आप देखिए कौन है जो मुतमईन दिखता है, इल्ला माशाल्लाह। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के दौर का वली है वो जो कह दे मुझे कोई गम और खौफ नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, वो वली है। क्यों? क्योंकि आज हर बंदा परेशान है। तो क्या अब नहीं है चीज़ें हमारे पास? पैसा ख़त्म हो गया, आप अपने ऊपर लेके देख लें, अपने रिश्तेदारों को देखिए, पहले हज़ारों की बात थी, फिर लाखों में गई, फिर करोड़ों में गई, अब उससे ऊपर जा रही है ना, पैसा तो बहुत है। जितने कपड़े आप बनते हैं आज से 20 साल पहले बनते थे, जितने जूते आज आपको मार्केट में दिखते हैं, क्या इतने जूते आज से 15 साल पहले दिखते थे? तो चीज़ों का तो बहुत इजाफा है। आप पकाने को देखिए, चलिए खाना पकता था, हमारे घरों में कोई मेहमान आता था तो क्या पकता था? आलू गोश्त पुलाव और साथ गजरेला, है यानी दावत की बात है, घर में एक दिन दाल, एक दिन सब्जी, एक दिन कोई और चीज़ हुई। अब दावत पके तो ये नहीं फिक्र होता पकाना कैसे है, ये फिक्र है क्या पकाना है, इतनी वैरायटी है, इटालियन है कि चाइनीज है कि फलां है कि फलां है, ऐसे है कि नहीं है? तो क्या फिर इतनी खुश हैं लोग, हमें कोई अवार्ड देकर जाते हैं, तारीफें करते हैं इसीलिए कि करेंगे तो अगली दफ़ा आप उनको बुलाएंगे, तारीफें करके खाना खा लिए तो क्या बड़ी बात है? हाँ, हर चीज़ में एक्सेसिवनेस है, हर चीज़ में हमारे पास ज्यादती है, बट खुशी नहीं है, मोहब्बत नहीं, मिठास ख़त्म हो गई। यानी मुझे ऐसे लगता है कि हम फीकी स्कंजवी पी रहे हैं, रियली ना रिश्तों में प्यार, हम सिर्फ दूसरे के लिए कुछ कर दिखाने को मोहब्बत कहते हैं। कोई आया 10 खाने पकाए, कोई आया उसको 10,000 का जोड़ा लेकर दिया, कोई आया उसको ये किया, यानी एक्सेसिवनेस या अपनी, और वो भी असल में अपना इजहार होता है कि हम अपने नाम की खातिर लाखों का खिलाते हैं, हजारों का, लाखों का, और बाज़ दफ़ा दूसरों को हम पीछे कर देते हैं। तो बस अपनी फिक्र करें। मैं तो यानी यही सोचती हुई हमेशा जाती हूँ, और आज इस मौजू को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद अगर इस किताब को पढ़ने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि लोगों ने हमें कुछ नहीं देना, ये जिसको जिस दिन एहसास हो गया ना उस दिन उसकी खुशियों का आगाज़ हो जाएगा। ये लिख लें आप, जब तक नज़रें लोगों पे रहीं आप कैदी ही रहे, उनकी आंखों में झांक रहे होते हैं कोई तारीफ के चंद बोल बोल दे, उनके हिलते हुए लबों में आप अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं, उसकी तारीफ का मुझे क्या फ़ायदा जो खुद अल्लाह के हाँ पता नहीं कैसा है, कर ले सारे मेरी तारीफ मुझे क्या मिलना है? और हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, कीमती वक्त हम सिर्फ दूसरों की दिलजोई में लगा देते हैं। बड़ी बड़ी बातें हम दूसरों की देखते हैं लेकिन हम कहते हैं नहीं चुप करो बुरा लगता है, बुरा कौन बने? और आप देखें कि हम कितने कुछ दिन हैं इस दुनिया में, मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी को यकीन हो जाए ना कि दिनों की पूंजी बड़ी थोड़ी है, अपने ऊपर ले, कल आखिरी दिन है ज़िंदगी का तो आज कैसे गुजारूंगी, बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजारें। असल बात यह है फोकस नहीं है, पता ही नहीं है ज़िंदगी में करने क्या आए थे, हमारा हाल ऐसा है कि जैसे आप किसी को भेजें दूध लेने और वो वहां जाके गुड़ियां पतंगे उड़ाने लग जाए। बाद में आए तो कि वो भूल ही गया, मैं तो गुड्डी उड़ाने में लग गया कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं ये आ गया। हम यकीन करें डिस्ट्रैक्टेड और डिट्रैक्ट लोग हैं, अपना रास्ता छोड़े हुए लोग हैं। ख़ास तौर पे मुझे अपने मुल्क में आके शिद्दत से एहसास होता है। सबसे सस्ती चीज़ इधर जो दिन ब दिन सस्ती हो रही है, आप कहेंगे वो भी है कोई, वो वक्त है, टाइम किलिंग। कभी कोई मीडिया पे बैठ के नेट पे कुछ ऐड करके करता है तो हम तो अपने घर में खेल खूल कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी को रियलिटी बेस में, आपको किससे खुशी मिलती है, अपने लिए क्या करें, क्या पहनूं कि मैं खुश हूँ, क्या खाऊं कि मैं खुश हूँ, मेरे घर की डेकोरेशन कैसी हो कि मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल है। आते जाते वो डेकोरेशन भी मेरे ही पाँव का नाखून नहीं तोड़ता, फिर मैंने इसको इधर नहीं रखना, ये जितना भी खूबसूरत लग जाए लेकिन ये मेरा बुत नहीं बन सकता। अपनी ज़िंदगी को इंजॉय, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अब देखिए हम बीमार हो जाते हैं, मैंने देखा लोगों को बीमारियां लग गई हैं सिर्फ इसलिए काम कर करके, खिदमत कर करके। ये भी एक किस्म का नेगेटिव रवैया है, और जिनके लिए किया ना वो खुश, ना जिन्होंने किया वो खुश। बहरहाल अगला किस्सा जो ये हज़रत सुमरा का है, सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बग़र्ज़ एहतसाब बाज़ार में निकलना और उसकी हकीकत। बाज़ार में लोगों के बासियत मुख्तसिबा मुकर्रर करने और बास लोगों ने हज़रत समरा बिनते नहीक के बाज़ार में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की खातिर निकलने से दलील ली है। हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर कहते हैं, समरा बिनते नहीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह को पाया और लंबी उम्र पाई। वो बाज़ारों में से गुजरती और नेकी का हुक्म देती और बुराई से रोकती थी और दौरान एहतसाब लोगों को अपने पास मौजूद छड़ी से मारती। अब ये वाक़या बयान किया जाता है। इस किस्से पर तबसरा, हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने इस किस्से को बिला सनद जिक्र किया, इससे इस्तदलाल से पहले इसका साबित करना ज़रूरी है, यानी इसकी दलील नहीं मिलती हमें, रेफरेंस नहीं है इसका। अगर ये वाक़या सच साबित भी हो तो इसमें यह तो नहीं कि रसूलुल्लाह ने या खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी ने इनको मुकर्रर किया था। एक दीन और अदब वाले माशरे में किसी बड़ी उम्र की औरत के बाजार में गुजरते हुए नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने से औरत के बहसियत मुहतसिबा मुतय्यन पर इस्तदलाल करना दूर की कौड़ी लाना। क्या समझ आया कि ये जो वाक्या है कि एक औरत जाते हुए रास्ते में लोगों को रोकती थी, तो आज भी बहुत सारी अम्मी हैं, बहुत सारी माइयाँ हैं, तो अब इसका ये तो नहीं मतलब कि उसको क्या, और ये इसका ये भी नहीं होता कि ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकते। आप गई हैं, रुकी हैं बाहर, आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है, अगर आप किसी को रोक टोक देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब आप औरत हैं और आप मर्दों के मुंह लग जाएं। यानी एक सिस्टर ने अपना वाक्य सुना था जो बहुत ही हया के मुनाफी है, लेकिन वो कहती हैं कि मैं शुरू शुरू की बात है, आजकल तो अब इसके बगैर तसव्वुर नहीं कपड़े बिके, लेकिन उस दौर में नई नई ये जो डमीज़ थी ना, ये दर्जियों ने और शॉप्स पे कपड़े बेचते उन्होंने लगानी शुरू कर दी थी। पहले आपको तो हमेशा हैंगर्स पे कपड़ा बिकता था, अब उसको डमी किया, ऐसा ऐसा चेहरा उतारा था, अब चेहरे भी लग गए, अब उसके पूरे फिगर्स बन गए। तो उनको वो मतलब किसी दुकान पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस देखा कि उसी डमी के कपड़े वाला डिज़ाइन मांग रही थी लड़की, तो उसने सबके सामने उसको उतारा, तो वो उस पर इन्होंने कुछ बात की तो उसने चिढ़ में आकर उससे भी बुरा काम किया। अब आप देखिए कि एक औरत जो किसी को बुरे बात से रोक रही है ऐसे वक्त पे, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप जा ही ना। मैं तो कहती हूँ 100 बातों की एक बात है, जहाँ आपको लगता है शर बहुत है, आपने जाके जलना कुड़ना क्यों है? फिर इससे सोसाइटी में औरतों ही औरतों के बीच में 2-3 तबके बन जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई अल्लाह के नबी के दौर में। चौथी जो है मुहतसिबा अहले बाजार से ज़्यादा आगाह होने का मफरूज़ा और उसकी हकीकत। बस फाजिल मुआसरीन, मुआसरीन कहते हैं एक ही दौर के लोग, असर से है, उन्होंने तहरीर किया कि मामलात को बहुस्नो खूबी सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि औरतों के बाजार में या बाजारों में औरतों के मखसूस हिस्सों में मनसब एहतसाब पर किसी खातून को फायज़ किया जाए, ताकि वो गाहक के रूप में बाजारों में जाए और औरतों से लेन देन करने वाले दुकानदारों के अहवाल और सीरतों से आगाह हो। इस मुकाम पर हमारा फाजिल मुसन्निफ से ये सवाल है कि वो मुख्तसिबा के मुतल गुफ्तगू कर रहे हैं या महकमा जासूसी में काम करने वाली खवातीन के मतलब। बाजार में बहसियत मुख्तसिबा किसी भी खातून की तकर्री की सूरत में से घंटों बाजार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। ऐसी हालत में वो गाहक का रूप धार कर दुकानदारों से अपनी हकीकी हैसियत कैसे छुपा सकती है? और अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ चंद दिनों के लिए काम करेगी, दुकानदारों के इसको जानने पहचानने से पहले एक दूसरी औरत को इसकी जगह मुहतसिबा मुकर्रर कर दिया जाएगा, तो इससे बारे में हम कहेंगे कि बाजारों में एहतसाब करने वाली बाहसियत जिम्मेदार औरतों का लश्कर हम कहाँ से लाएंगे? सूरत हाल तो यह है कि बाजारों में एहतसाब करने वाले बासलाहियत मौजू और जिम्मेदार मर्द भी मतलूबा तादाद में मुयसर नहीं होते। यानी कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तकिल एक औरत को इतना ना भी काम दिया जाए, तो एक औरत को थोड़ी देर रखा जाए फिर वो चली जाए तो फिर दूसरी को ले आया जाए, तो इसमें तो बल्कि और भी बिगाड़ की बातें हैं। तो सारी बात का खुलासा ये कि ऐसा नहीं किया जाता।